चतुर्थ उच्छवास। निपुणिका ने अपनी स्वामिनी को छिपा रखने के लिए जिस स्थान को चुना था उसके दर्शन मात्र से मेरा हृदय बैठ गया। वह एक देवी मंदिर से संलग्न छोटा सा जीर्ण गृह था। जब निपुणिका के घर से कुछ आवश्यक सामग्री लेकर चोरों की भांति हम नगर प्रांत में अवस्थित उस मंदिर के पास पहुंचे, उस समय चंद्रमा पश्चिमाकाश की ओर लटक गया था। सप्तर्षियों का मंडल मानसरोवर में स्नान करने की तैयारी में था और काल पुरुष अस्तगिर के शिखर को छूता दिखाई दे रहा था। चांदनी उस समय भी दूध के समान श्वेत होकर धरित्री को ढके हुए थी। चंडी मंदिर के बाहर लोहे के मोटे छड़ों का बना हुआ एक विराट कपाट था जिसके भीतर से चंडी की मूर्ति स्पष्ट दिखाई दे रही थी। देवी के सामने एक लौह वेदिका पर कज्जल के समान काला भैंसा स्थापित था जिसके सारे शरीर पर भक्तजनों ने लाल थापे दे रखे थे। ऐसा लगता था कि वह साक्षात यमराज का वाहन है और यमराज ने रक्ताक्त हाथों से थप्पड़ मार मार कर उसे चलाया है। देवी के चरणों के पास ही एक छोटी वेदी थी जिस पर कोई लाल वस्तु दिख रही थी। बाद में मैंने देखा कि वह और कुछ नहीं एक पीढ़े पर रखा हुआ महावर से रंगा वस्त्र खंड है। मंदिर के सामने एक खुला हुआ प्रांगण था जिसके कुट्टे विदीर्ण हो चुके थे और दरारों से हरिद्वर्ण के तीर निकलकर जीवनी शक्ति की विजय घोषणा कर रहे थे। इसी प्रांगण से सटा हुआ एक घर था जो बाहर से गुफा जैसा दिखाई दे रहा था। घर के सामने कुछ अत्यंत परिवर्धित करवीर के झाड़ थे जिनमें वन कुकुरों ने रात को आश्रय ग्रहण किया था। निपुणिका ने बड़ी सावधानी से उस घर को खोला और जब हम तीनों उसमें प्रविष्ट हो गए तो सावधानी के साथ भीतर से बंद कर दिया। बंद कर देने के बाद वह आंगन के चारों ओर से घिर जाता था। आंगन में दो तीन छोटी छोटी कोठरियां थी और एक जीर्ण प्राय कुआं था। इस भग्न प्राय प्रांगण गृह को ज्योत्सना ने और भी भयंकर बना दिया था। आंगन में भीतों पर लाल रंग से चित्रित नाना प्रकार के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। जान पड़ता था किसी समय इस घर में कोई भैरव अपनी भैरवी के साथ वाम मार्ग की साधना किया करते थे क्योंकि उन चिन्हों का यही अर्थ हो सकता था। निपुणिका ने इस कुसुम सुकुमार राजकन्या को छिपाने के लिए इस भयंकर स्थान को चुनकर न तो बुद्धिमानी का परिचय दिया था और न सुहृदयता का, लेकिन वह लाचार थी। उसकी श्रेणी की दासी के लिए इससे उत्तम स्थान चुन सकना असंभव था। उसने केवल एक बार मेरी ओर कातर भाव से देखा। उस दृष्टि का स्पष्ट तात्पर्य था, इससे अधिक मेरे बस की बात न थी। वह प्रसन्न नहीं थी। मेरा पौरुष गर्व परास्त हो चुका था। एक दीर्घ निश्वास द्वारा मैंने अपना असंतोष प्रकट किया। मेरे प्राण हाँफ उठे थे। उस निसर्ग सुकुमार राजवाला की ओर आंख उठाकर देख सकने का साहस भी मुझ में नहीं रह गया था। मैं जिस समय अवसन्न होकर बैठ पड़ने जा रहा था उसी समय राजवाला ने थके हुए स्वर में कहा, भद्र विलम्ब हो रहा है, करणी हो सो करो। इस वाक्य ने विद्युत की त्वरा के साथ मेरे समस्त अस्तित्व को झकझोर कर जगा दिया। मेरा जड़भाव जाता रहा। ऐसा लगा जैसे किसी अमृत संजीवनी ने मेरे भीतर नए प्राण भर दिए हैं। विनीत भाव से मैंने कहा, देव आज इसी स्थान पर विश्राम करें, कल मैं कोई और व्यवस्था करूंगा। मुझे इस स्थान पर आपको देखकर बड़ा कष्ट हो रहा है पर विवश हूँ। उत्तर मिला, मुझे कोई कष्ट न होगा, करणीय कीजिए। निपुणिका ने एक छोटी कोठरी की ओर चलने का इशारा किया। उसके वचन रुद्ध हो गए थे, शायद वह रो रही थी। वह कोठरी अपेक्षाकृत साफ और मजबूत थी। वहाँ एक कंबल पहले से ही बिछा हुआ था। हमने राजबाला को अंधेरे में वहीं विश्राम करने को कहा। राजबाला के बैठ जाने के बाद हम दोनों अन्यान्य कार्यों में जुट गए। निपुणिका कुछ देर तक चुपचाप काम करती रही पर उसकी प्रत्येक क्रिया से एक व्याकुल आशंका का भाव प्रकट होता रहा। मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। पहले तो वह जबदी सी खड़ी रही, फिर धीरे धीरे बोली कि किस प्रकार यहाँ के वृद्ध पुजारी को हाथ करके उसने यह घर हथियाया है। यद्यपि इस मंदिर में बहुत कम लोग आया करते हैं फिर भी यह स्थान सुरक्षित नहीं है। इस विषय में निपुणिका को कोई संदेह नहीं था। उसने बताया कि दिन की को इस घर का पूर्ण रूप से बंद रहना ही उचित है। मुझे दिन भर बाहर रहना होगा और रात को पुजारी के सो जाने के बाद ही निपुणिका से मिलना संभव होगा। पर वस्तुतः निपुणिका ने जो बात नहीं कही वही उसका प्रधान वक्तव्य था। वह डरी हुई थी। पहले उसने इस स्थान पर आने के परिणामों को जितना हल्का समझा था अब उतना हल्का नहीं समझ रही थी। स्त्री सुलभ भूमिका ने उसे अभिभूत कर लिया था। मैंने साहस बढ़ाते हुए कहा, न्यूनिया बाण भट्ट के साथ रहकर भी तू डरती है? वह आंखें नीचे किए ही किए रही और स्खलित भाव से नहीं कहकर धीरे धीरे भीतर चली गई। प्रभात होने में ज्यादा देर नहीं थी, मैं बाहर निकल आया। निपुड़िका ने भीतर से घर बंद कर लिया। देखते देखते चंद्रमा पद्म मद से रंगे हुए वृद्ध कलहंस की भांत आकाश गंगा के पुलिन से उदास भाव से पश्चिम जलत के तट पर उतर गया। समस्त दिंगमंडल वृद्ध रंगकुमरिक की रोमराज के समान पांडुर हो उठा। हाथी के रक्त से रंजित सिंह के सटाभार की भांत किंवा लोहित वर्ण लाक्षारस के सूत्र के समान सूर्य किरणें आकाश रूपी वन भूमि से नक्षत्र रूपी फूलों को इस प्रकार झाड़ देने लगी मानो वे पद्म राग मणि की शलाकाओं से बनी हुई झाड़ू हों। तारिकाएं लुप्त होने लगी। दो एक जो अभी बच रही थी वे पश्चिमाकाश रूपी समुद्र तट पर सीपियों के उन्मुक्त मुख से बिखरे हुए मुक्ता पटल की भांति दिख रही थी। पूर्व की ओर प्रकाश आविर्भूत होने लगा। धीरे धीरे शिशिर बिंदु को वहन करता हुआ पद्मवान को प्रकंपित करता हुआ परिश्रांत नगर रमणियों के धन बिंदु को विलुप्त करता हुआ वन्य महिषों के फेन बिंदु को सिंचा हुआ कंपमान पल्लवों और लता समूहों को नृत्य की शिक्षा देता हुआ प्रस्फुटित पद्म का मधु वर्षा कर पुष्प सौरभ से भ्रमरों को संतुष्ट करके मंद मंद संचारी प्रभातवात बहने लगा। इस समय तक छोटे राजकुल में न जाने क्या घटा होगा। शायद सबसे अधिक आघात वृद्ध वाभ्रव्य को सहना पड़ेगा। अब तक शायद निपुणिका का घर जला दिया गया होगा। मैंने संतोष की सांस ली क्योंकि मैं इस विपत्ति में निपुणिका के साथ था और सौभाग्यवश इस नगर में मुझे कोई पहचानता भी नहीं। निपुणिका के घर से जब हम आवश्यक सामग्री लेने गए थे उस समय मैंने अपना शुक्ल वेश धारण कर लिया था। इस समय मैं निरीह ब्राह्मण था। यद्यपि रात भर की क्लांति से मेरा शरीर कुछ अवसन्न हो गया था पर इस समय आराम करने की प्रवृत्ति मेरे अंदर नहीं थी। मैं यही सोच रहा था कि किसी अच्छे स्थान पर कैसे जाया जा सकता है। पास की टूटी पुष्करणी में हाथ मुंह धोकर मैं देवी के सामने जाकर स्तुति पाठ करने लगा। अनति पश्चात एक वृद्ध ब्राह्मण चंडी मंदिर की ओर आते दिखाई दिए। उन्होंने भक्तिपूर्वक चंडी को प्रणाम किया और परिक्रमा करके प्रांगण में खड़े हो गए। मैंने भी परिक्रमा की और प्रणाम किया। वे मेरी ओर इस प्रकार ताक रहे थे जैसे कुछ जानना चाहते हूँ। मैं उनके पास गया और प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए उन्होंने बताया कि इसके पहले उन्होंने कभी मुझे नहीं देखा है और जानना चाहते हैं कि मैं इधर कैसे भटक पड़ा हूँ। मैंने विनीत भाव से कहा कि मैं परदेशी हूँ, रात को यहीं टिक गया था। वे थोड़ी देर तक हंसते रहे। बोले, तो आप भाग्यवान हैं, पुजारी बाबा से आपका साक्षात्कार नहीं हुआ। मैंने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, पुजारी बाबा को मैं नहीं जानता। वे बोले, जानते तो यहाँ नहीं रुकते। मैंने इसका कारण पूछा। फिर वे हंसकर पुजारी बाबा का परिचय देने लगे। वृद्ध काफी सरस जान पड़ते थे। उन्होंने पुजारी की वर्णना बड़ी रसमयी वाणी में की। बताया कि पुजारी कोई वृद्ध द्रविड़ साधु हैं। उनके काले काले शरीर में शिराएं इस प्रकार फूटी दिखाई देती हैं, मानो उन्हें जला हुआ खंभा समझकर गिर गिर चढ़े हुए हों। सारा शरीर घाव के दागों से इस प्रकार भरा है मानो लक्ष्मी देवी ने शुभ लक्षणों को उस देह से काट काट कर अलग कर दिया है। वे काफी शौकीन भी हैं। यद्यपि वृद्ध हैं तो भी कानों में अंड पुष्प का लटकाना नहीं भूलते। वे भक्त भी हैं क्योंकि चंडी मंदिर की चौखट पर सिर ठुकराते ठुकराते उनके ललाट में अर्बुद हो गया है। वे तांत्रिक भी हैं, प्रायः ही वृद्धा तीर्थ यात्रियों पर वशीकरण चूर्ण फेंका करते हैं। वे प्रयोग कुशल भी हैं क्योंकि एक बार गुप्त स्थानों की नीति दिखाने वाला कज्जल लगाकर एक आंख को खो चुके हैं। वे चिकित्सक भी हैं, अपने आगे वाले लंबे और ऊंचे दांतों को समान बनाने के उद्योग में अन्य दांतों को खो चुके हैं, पर वे ऊंचे दांत जहां के तहां हैं। वे विनोदी भी हैं क्योंकि बालकों के पीछे एक बार ईंट लेकर दौड़ पड़े थे और लुढ़क कर गिर गए थे जिससे होंठ कुछ कट गए हैं। उनकी विद्या का भंडार अक्षय है। समस्त दक्षिणा पथ की संपत्ति प्राप्त करने की आशा से कपाल तिलक धारण करते हैं। हरे वगरेण के पत्रों से के रस में शमशान का कोयला पीसकर उससे एक सीपी को रंग रखा है। उनका विश्वास है कि उसे देखने मात्र से धनियों के हृदयों में उच्चाटन होता है और वे अपनी संपत्ति छोड़कर चल देते हैं। माया वशीकरण के ऊपर भी उनका विश्वास है। इस कार्य के लिए उन्होंने तालपत्र की एक पोथी पर महावर के रंग से 100,000 बार हूँ फट लिख रखा है और उसे गुग्गल धूप से धूपित किया है। उनका विश्वास है कि इस पोथी को देखकर रमणियां उनकी चेरी हो रहेंगी। आंख यद्यप एक ही है पर उसमें एक चिक्कन शलाका द्वारा नित्य अंजन लगाया करते हैं। यद्यप रात को रतौंधी के कारण देख नहीं सकते परंतु अप्सराओं के अप्रत्याशित आगमन की आशा से रात भर प्रदीप जलाए रखते हैं। यद्यप निद्रा में कुंभकर्ण के प्रतिद्वंदी हैं पर स्वप्न में नुपुर कोणा निरंतर सुना करते हैं। यद्यप वानरों से स्पर्धा करके पेड़ पर से कूद कर एक पैर खो चुके हैं पर मूल स्थानीय उपानहों को यत्न पूर्वक संग्रह कर रखा है। ब्राह्मणों से उनका निसर्ग वैर है और आप यदि अभी यहाँ से नहीं टल जाते तो एक टंटा जरूर खड़ा करेंगे। भगवान की इतनी लोकानुकंपा अवश्य है कि उन्हें कांड खंज और बधिर बना दिया है, नहीं तो यह स्थानेश्वर अब तक उजाड़ हो गया होता। वृद्ध के इस वर्णन को सुनकर मैं समझ गया कि निपुणिका ने किस प्रकार इन्हें हाथ किया होगा और अब वह डर क्यों रही है, परंतु मुझे कुतूहल ही हुआ। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसे लोकोत्तर महात्मा के दर्शन बिना तो नहीं चला जाता। वृद्ध ने हंसते हुए कहा, जरूर दर्शन कीजिए पर सावधान रहकर। कब सिर पर डंडा बैठा देंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कहकर वृद्ध वहां से चलते ही बने। मैं भी प्रांगण से दूर हटकर वृद्ध पुजारी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद पुजारी निकले, चंडी मंदिर के गर्भगृह में ही सोए हुए थे। उनकी आंखें लाल थीं। वृद्ध ने उनका जैसा रूप वर्णन किया था वे वैसे ही थे। चंडी मंडप से निकलकर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, फिर हाथ के डिब्बे से काला सा चूर्ण निकालकर उस प्रांगण गृह की ओर फेंका जिसमें हम लोगों ने आश्रय लिया था। जल्दी जल्दी वे उस घर की ओर बढ़े, दो एक बार शीघ्रता के कारण लड़खड़ा भी गए। प्रांगण गृह के द्वार पर उन्होंने चूर्ण विक्षेप किया और संभल कर बगल से तालपत्र की पोथी निकाल उसे सामने कर लिया। फिर उन्होंने जोर जोर से द्वार पर धक्का मारा। निपुणिका सावधानी से बाहर आई और लीला कटाक्ष से एक बार वृद्ध साधु की ओर देखा। फिर तो पुजारी के ऊपर वाले अर्धावशिष्ट दांत बाहर निकल आए और सूखे हुए कपोलों पर अनुराग की हरितिमा दौड़ गई। बहुत दिनों के बाद उनका तंत्र सफल हुआ था। वे उस महावर लिखित तालपत्र की पोथी को बराबर सामने लिए हुए थे। यद्यपि निपुणिका ने उस पोथी की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया तथापि यह तो स्पष्ट ही जान पड़ता था कि वे इस विजय को उस पोथी का ही सुपरिणाम समझ रहे थे। शायद उन्हें यह आशंका थी कि पोथी सामने से हटा लेने पर वशीकरण का प्रभाव जाता रहेगा। मैं दूर बैठा यह कौतुक देख रहा था। निपुणिका ने क्या कहा यह तो मुझे नहीं मालूम, पर उसने एक बार मेरी ओर उंगली उठाकर दिखाया। पुजारी मुझे देखते ही अग्नितप्त हो गए। निपुणिका ने किवाड़ बंद कर लिए और पुजारी मेरी ओर दौड़ पड़े। शायद निपुणिका ने मुझे दिखाकर यह बताया था कि इस समय निर्जनता नहीं है और पुजारी का उसके पास आना ठीक नहीं हुआ। पुजारी ने मुझसे क्या क्या कहा यह मुझे ठीक नहीं मालूम, क्योंकि उनकी स्खलित वाणी का स्पष्ट सुनना सहज नहीं था, परंतु ये बातें भले आदमियों के सुनने योग्य नहीं रही होंगी, इस विषय में मुझे लेश मात्र भी संदेह नहीं। वे क्रोध की मूर्ति बने हुए थे। यद्यपि वे एक पैर से लंगड़े थे पर दौड़ने में उन्होंने कोई बात उठा नहीं रखी। शीघ्रता के कारण उनके हाथ से कज्जल चूर्ण का डिब्बा लुढ़क गया और करीब करीब खाली हो गया। ऐसा जान पड़ता था कि मुझे इस स्थान पर बैठने के पाप का प्रायश्चित अवश्य करना होगा। उन्होंने एक बड़ा सा प्रस्तर खंड मेरे ऊपर फेंका, लेकिन वहाँ के प्रस्तर खंड भी पुजारी बाबा का परिहास करना चाहते थे। उनके उत्तरी में उलझ कर वह पत्थर उनकी पीठ पर आ गिरा। बाबा का क्रोध और भी उफन पड़ा। मैं उन्हें शांत करने का कोई उपाय सोच नहीं पा रहा था, लेकिन पत्थर ने ठीक मौके पर मेरी सहायता की। उत्तरी के उलझने से उनका उक्षस्थल खुल गया। सुख काले धागे में बंधी हुई उच्चाटन वाली सीपी दिख गई। मुझे मेरा करणीय सूझ गया। अत्यंत नम्रता पूर्वक मैंने प्राणपात किया और हाथ जोड़कर कहा, धन्य हो महान धार्मिक, आश्चर्य है यह उच्चाटन सुख, अद्भुत है इसकी महिमा। मुझे नगर श्रेष्ठी धनदत्त ने भेजा है। आपकी इस अद्भुत शक्ति को देखकर उनका मोह टूट गया है। धन वैभव कमल पत्र के बुदबुद के समान उन्हें निर्विकार छोड़कर अलग हो गए हैं। संसार से उन्हें वैराग्य हुआ है। वे अपनी समस्त संपत्ति आज ही आपके चरणों में समर्पण करना चाहते हैं। यदि आप उन्हें शिष्य बना लें तो वे अभी सेवा करने को उपस्थित हो जाएंगे। मैं तब तक आपकी स्वीकृत का संदेशा उनके पास न ले जाऊंगा तब तक वे अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे। धार्मिन ने एक बार गर्व के साथ अपनी आश्चर्य विभव भूमि सूक्ति की ओर देखा, फिर धीरे धीरे शांत होकर बोले, धनदत्त का कल्याण हो, बड़ा धार्मिक है, उससे कह दे कि वह संपत्ति दे जाए। शिष्य होना हो तो सौगतों के सुगत भद्र के पास जाए, मैं शिष्य नहीं बनाता। यह कहकर उन्होंने गर्व के साथ एक बार फिर सीपी की ओर देखा। उस दृष्टि का तात्पर्य यह था कि बच्चू अब तो फंस गए हैं, जाएंगे कहाँ। मुझे एक नई सूचना मिली। मैंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से पूछा, वे अपनी संपत्ति और किसी को नहीं देना चाहते, वे आपको चरणों में ही सब कुछ रख देने का संकल्प रखते हैं। आपकी अनुमति से वे सौगतों के शिष्य भी बन सकते हैं, अनुज्ञा दे, उन्हें इसी प्रकार का संदेशा दे आऊं। पुजारी ने कहा, हाँ जा, अभी जा, कल मैं कुछ नहीं लेता, मैं आज ही यहाँ से कान्यकुब्ज की ओर चला जाऊंगा। स्थानीय ईश्वर के नागरिक असभ्य हैं, भाग्यहीन हैं, कुत्सित हैं, मैं उन पर थूकता हूँ। और सचमुच ही धार्मिक ने थूक दिया। फिर बोले, परिहास करना हो तो वे इधर आएंगे, मैं पूर्णिमा के दिन उनकी अभद्रता नहीं सह सकता। मुझे इस बात का रहस्य बाद में मालूम हुआ। बात यह थी कि फाल्गुनी पूर्णिमा को कई बार नागरिकों ने वृद्धा वेश्याओं से पुजारी का विवाह करा दिया था। इधर के लोग ऐसे परिहास में अधिक प्रगल्भ हैं। अब तक पुजारी बाबा को इस परिहास का ज्ञान हो गया था। वे आज ही स्थान ईश्वर त्याग करने वाले थे। उनकी इच्छा शायद निपुणिका को साथ ले लेने की थी। मैंने उत्तम अवसर देख कर कहा, तो क्यों न परम धार्मिक श्रीमान श्रेष्ठी धनदत्त के महल की ओर चले। नगर के प्रांत देश में जो ऊंचा महल है वहीं उनका निवास स्थान है। पुजारी बाबा आज अपनी सफलता के मद में बेहोश थे। बोले, नहीं जाता मैं किसी के महल की ओर, धनदत्त को पड़ेगी तो 100 बार यहाँ आएगा, तू जा यहाँ से, सौगतों के सुगत भद्र के पास जा, वह घर घर भीख मांगता फिरता है, मैं चंडी मंदिर को छोड़कर कहीं नहीं जाता। मैंने कहा, साध, परम धार्मिक साध, तपस्या इसे कहते हैं, भक्त इसका नाम है, भला वह सुगत भद्र कहाँ रहता है। पुजारी ने अनति दूर स्थित एक विहार की ओर उपेक्षा पूर्वक उंगली उठाई, बोले, वहाँ। फिर मेरी ओर देखे बिना ही चंडी मंडप की ओर चले गए। मैं क्षण भर वहीं खड़ा रहा और सोचता रहा कि एक बार उधर का रंग भी क्यों न देखाऊं। वस्तुतः मैं भूल ही गया था कि मुझे धनदत्त के पास पुजारी बाबा की अनुज्ञा ढो ले जाने का काम करना है। पुजारी ने एक बार मेरी ओर देखा, फिर तेजी से आकर बोले, जा, जल्दी से जा, मार डालेगा बेचारे धनदत्त को, तो पाप कृत्य है, वह अन्न जल छोड़े बैठा है, तू यहाँ खड़ा है, सचमुच ही तो मैं कैसा कुभृत्य हूँ।